ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ रणनीतिक वार्ता करेंगे। श्री नहयान दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वे चौथी रणनीतिक वार्ता और 15वीं भारत यूएई संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संयुक्त अरब अमीरात के नेता का स्वागत करते हुए एक पोस्ट में कहा कि उनके इस दौरे से भारत और यूएई के बीच बहुआयामी और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सदियों से व्यापारिक संबंध रहे हैं। इस पश्चिम एशियाई देश में 35 लाख से अधिक भारतीय हैं और अमीरात के लोग भारतीय संस्कृति से काफी परिचित होने के साथ ही उसके प्रति संवेदनशील भी हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय सिनेमा, टीवी और रेडियो चैनल के दर्शकों की एक बड़ी संख्या है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 1 से 1.5% तक बढ़ सकती है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति ने इसकी वकालत करते हुए कहा कि ये देश के लिए परिवर्तनकारी होगा। श्री कोविंद ने कानपुर में संवाददाताओं को बताया कि देश में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव कराना राष्ट्र के हित में है। इस वर्ष सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी थी, जिसमें लोकसभा, विधानसभा, शहरी निकायों और पंचायतों के लिए समवर्ती चुनाव को 100 दिनों की समय सीमा के भीतर आयोजित करने का प्रस्ताव था। सोशल मीडिया मंच प्रदान करने वाली कंपनी मेटा ने पुष्टि की है कि तकनीकी समस्या के चलते इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को ऐप के इस्तेमाल में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसने न तो समस्या के बारे में कोई जानकारी दी है और न ही पूर्ण सेवा बहाल करने की कोई आधिकारिक समय सीमा बताई है। मेटा ने एक्स पर एक बयान में पुष्टि की है कि कंपनी को पता है कि इस तकनीकी समस्या के कारण कुछ उपयोगकर्ताओं को ऐप्स का इस्तेमाल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने कहा है कि वे सामान्य सेवा जल्द बहाल करने के लिए काम कर रही है और उपयोगकर्ताओं से असुविधा के लिए खेद जता रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्ष 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जबकि वर्ष 2040 तक कोई भारतीय नागरिक चांद पर उतरेगा। नई दिल्ली में सभी विज्ञान मंत्रालयों की उपलब्धियों पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए अंतरिक्ष सुधारों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अवसरों को उजागर किया है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 लद्दाख और जम्मू कश्मीर में दो अलग अलग चरणों में आयोजित किए जाएंगे। आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसी बर्फ पर खेली जाने वाली प्रतियोगिताएं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 23 से 27 जनवरी तक आयोजित की जाएंगी, जबकि जम्मू और कश्मीर में 22 से 25 जनवरी तक अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की पर्वतारोहण और स्नोबोर्डिंग जैसी बर्फ पर खेली जाने वाली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए एथलीटों की पहचान करने में इन आयोजनों के महत्व पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक सांस्कृतिक और कलात्मक उत्सव सोन जल 2024 आज से श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय में शुरू होगा। 9 दिवसीय उत्सव में क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा रचनात्मकता और सहयोग की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र विविध प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आज से नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट के पास 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कर रहा है। इसमें पूरे भारत के दिव्यांग कारीगर, उद्यमी और कलाकारों की प्रतिभा के साथ ही उनकी रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना को प्रदर्शित किया जाएगा। मेले में 100 से अधिक दिव्यांग उद्यमी और कारीगर अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों की क्षमता, दृढ़ संकल्प और कौशल को प्रदर्शित करना है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ और पंजाब के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल माही, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।